ओम शांति। आदरणीय उषा दीदी जी से हमने सकाश का महत्व और सकाश के प्रकार जो है उस पर बहुत गहराई से सुना। अभी सभा में हमारे मध्य आदरणीय सुशील भाई जी है जो सकाश के प्रैक्टिकल अनुभवों की अनुभूति हम सबको यहाँ कराएंगे। भाई जी 1995 से ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े हुए हैं। 1999 में उन्होंने इस मधुबन घर में यज्ञ में समर्पित रूप से सेवाएं देना शुरू किया। उसके पूर्व 14 वर्ष पहले उन्होंने सोनी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन के तौर पर अमृतसर पंजाब में सेवा की है। तो ऐसे 1999 से यहाँ सेवा में कार्यरत है, क्लासेस कराते रहते हैं। इनका विशेष जो मधुबन में सेवा में सहभाग है वो सोशल सर्विस विंग के साथ है। राजस्थान पत्रिका में आप संवाददाता के स्वरूप में कार्यरत है। तो ऐसी सेवाएं करते हैं तो हमारे मध्य आज भाई जी है तो हम सब उनसे सुनेंगे। आदरणीय सुशील भाई जी।
ओम शांति। भट्टी का आज अंतिम दिन है तो सभी भट्टी के दौरान भरपूर हुए होंगे, चार्ज हुए होंगे, रिफ्रेश अनुभव करते होंगे अपने आप को, क्योंकि मधुबन एक ऐसा स्थान है जहाँ ना चाहते हुए भी आत्मा उड़ान भरना आरंभ कर देती है। मधुबन की धरनी बेहद अनुभव कराने वाली धरनी है जिसके मिट्टी के कण कण में परमात्म शक्तियां समाई हुई हैं। असंख्य अनुभव यहाँ उन महान तपस्वी आत्माओं के बिखरे हुए हैं जो आत्मा इतने बड़े यज्ञ को विशाल वट वृक्ष की तरह पूरे संसार में फैलाकर हमारे सामने प्रैक्टिकल रूप में त्याग तपस्या के माध्यम से अनेक आत्माओं के जीवन चरित्र को महान बनाकर गई। वो सभी आत्माएं भी यहीं मौजूद हैं, उनके वाइब्रेशन और जहाँ इस हॉल में हम सभी बैठे हैं इसमें भी स्वयं भाव दादा की यह पद्रमणि 76 से लेकर 83 तक सैकड़ों बार हुई है तो यहाँ के वाइब्रेशन भी बहुत शक्तिशाली हैं। जीवन एक अनुभवों की श्रृंखला होता है। बचपन से लेकर जितने भी बुढ़ापे तक हम अवस्थाओं से गुजरते हैं अनुभवों की कड़ी जुड़ती जाती है। हर एक व्यक्ति अपने आप में अनुभव होता है अपने अपने क्षेत्र में, लेकिन बाबा कहते तुम बच्चे स्पिरिचुअल पावर हाउस हो तो हम आत्मों के अनुभव भी संसार से निराले हैं, अनोखे हैं। जो आत्में संसार में अनुभव करती हैं उन आत्माओं के अनुभव और जो विशेष परमात्मा बच्चे हैं, वैसे संसार में सभी परमात्मा के बच्चे ही हैं, लेकिन जिन पर डायरेक्ट परमात्मा की दृष्टि पड़ती है और वो दृष्टि से स्वयं को भरपूर करते हैं, अपने जीवन को परिवर्तन करते हैं, तो उनके अनुभव दिव्य अलौकिक निराले हैं और वो अनुभव सभी ने किए हुए हैं। लेकिन उन अनुभवों को बढ़ाने के लिए सहेजना पड़ता है उनको, उन अनुभवों को संजोना पड़ता है, उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है ताकि वो अनुभव हमारे शक्तिशाली बन जाएं, वो हमारे जीवन चरित्र में समा जाएं। ऐसी कोई ब्राह्मण आत्मा नहीं होगी जिसको अनुभव नहीं हुआ होगा। ब्राह्मण जन्म लेते ही श्रीमत के कदम पर कदम रखते हुए अनुभवों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और वो अनुभव हमारे जीवन को सरल सुगम कर देते हैं। जितनी भी समस्याएं आती हैं वो समस्या अनुभव नहीं होती बल्कि खेल अनुभव होता है अगर हम अपने अलौकिक दिव्य अनुभवों को स्मृति में रखें। जो भी हमको अनुभव होते हैं उनकी एक स्वयं ही एक माला तैयार करनी चाहिए। अगर जीवन को अनुभवी मूर्त बनाना है, अगर उन अनुभवों को हमने जीवन में संजोया नहीं है और भूल जाते हैं तो कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए अनुभव की श्रृंखला या अनुभवों की माला, हमारे पास अपने अनुभवों की माला होनी चाहिए कि परमात्म दृष्टि पड़ने के बाद हमारे जीवन में कौन कौन से अनुभव हुए, चाहे वो देखने से लेकर बोलने चलने तक, संस्कार परिवर्तन तक, व्यवहारिकता तक, सभी के जीवन में अनुभव, अनेकों अनुभव हैं, लेकिन उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं कई दफा। फिर वो अनुभव हमारे से दूर चले जाते हैं, कोसों दूर चले जाते हैं, हमारी स्वयं की प्रॉपर्टी हमारे हाथ से छिन जाती है और उस प्रॉपर्टी को छोड़ने के भी हम ही उसके हकदार ये होते हैं, क्यों हमने छोड़ा उसको, विस्मृत हो जाते हैं। स्मृति और विस्मृति कल के वरदान में था। तो जितना हमारी स्मृति शक्तिशाली है उतना हमारी अनुभव भी शक्तिशाली है। तो आज का जो विषय है साकाश के प्रैक्टिकल अनुभव, तो पहला प्रश्न ये है आप सब से, साकाश अर्थात क्या? वाइब्रेशन और हाँ जी लाइटोस माइटोस हाँ जी तो आए देना शुभ भावना शुभ कामना प्रकंपन फैलाना, तो ऐसे एक लिस्ट बनानी है, कम से कम 100 तो होने चाहिए। वायुमंडल को फैलाना, उसमें अपने वाइब्रेशन हाँ जी दिव्य थॉट्स पवित्र थॉट्स हाँ जी प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाना, जो भी पिछली सेशन में किया कमेंट्री में किया होगा ना, तो पावन तो बन ही गए सभी। और सात गुण कंबाइंड रूप में रखकर उनका साकाश लेना, तो साकाश बिल्कुल सही है, सभी ने सही फरमाया। साकाश अर्थात ऊर्जा का प्रसारण। अब प्रश्न यह है, प्रसारण तो बाद की बात है लेकिन पहले ऊर्जा। हम सभी के अंदर बहुत सारी ऊर्जा भरी हुई है, चाहे वो नेगेटिव है, साधारण है, पॉजिटिव है, सभी के अंदर है। अब वो ऊर्जा आती कहां से हमारे अंदर? उसका स्रोत है हमारा थॉट सिस्टम, संकल्प। जब से हम इस धरा पर उतरे हैं, कब उतरे थे? 5000 वर्ष पहले। कितने बजे? चेक करना उसके पीछे जा, कितने बजे उतरे थे, कौन सी बेला थी, वो दिन था या रात था, सवेरे थी या शाम थी, बारिश हो रही थी या नहीं हो रही थी, बरसात थी या सर्दियां थी, कब उतरे थे हम? बरसात सर्दियां तो थी नहीं, सदाबहार मौसम था। तो जब से भी हम उतरे हैं तब से लेकर आज तक जो भी हमने संकल्प किए हैं, असंख्य संकल्प हैं, वो संकल्प जितने भी हमने संग्रहित करके रखे, संग्रहित कर स्वयं में अंदर जमा किए हुए हैं, रखे हुए हैं, वो एक ऊर्जा के रूप में एकत्रित हुए हैं। उस ऊर्जा का प्रसारण अपने आप ही होता रहता है। एक है हम विशेष स्मृति में रहकर प्रसारण करते हैं उनका, एक है स्वतः होता है। जैसे सूर्य को स्मृति नहीं करनी पड़ती, मैं सूर्य और प्रसारण कर रहा हूं, वो स्वतः उसका स्वभाव है। ऐसे कई बार हमको योग करने के लिए कहा जाता है, अर्थात हमको स्मृति दिलाई जा रही है, और दूसरा स्वतः हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं, अर्थात हमारी जो वृत्ति है, मानसिकता, वो संपूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुकी है। तो वाइब्रेशन अपने आप ही जा रहे हैं, अर्थात सारे दिन की दिनचर्या में हमारे जो संकल्प हैं, वो संकल्प ईश्वरीय श्रीमत के अनुसार ही अगर चलते हैं तो उनका प्रसारण अपने आप ही होता रहता है। तो हमने आज तक कौन कौन से संकल्प किए होंगे सत्युग से लेकर अभी तक? सत्युग और त्रेता में तो संकल्प करने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, द्वापर से आवश्यकता पड़ती है। और सबसे ज्यादा संकल्प कृष्ण कब करते हैं हम? हाँ जी, संगम पर, क्योंकि कलयुग तो हमको संकल्पों का तो इतना होश ही नहीं है, पता नहीं है उसकी शक्ति का। लेकिन अब हमारे जो संकल्प हैं बहुत बहुमूल्य हैं, बेशकीमती खजाना है वो, अमूल्य धरोहर है हमारे संकल्प। जैसे संसार में भी पुरानी विरासत धरोहरें होती है, उनको संभालने के लिए गवर्नमेंट कितना ध्यान रखती है विश्व स्तर पर भी, तो हमारे जो संकल्प हैं संसार के लिए अमूल्य धरोहर है। एक एक जो संकल्प है वो संसार की आत्मा को कुछ देने के लिए है। जैसे धरोहर को बचाकर रखते हैं तो धरोहर को केवल देखने मात्र के लिए टूरिस्ट आते हैं, उसका दर्शन करते हैं। तो हम भी कौन सी मूर्तियां हैं? चैतन्य मूर्तियां हैं। बाबा कहते हैं तुम दिव्य दर्शनीय मूर्त हो, तो हमारे दर्शन मात्र से ही दूसरों के क्या होना चाहिए? दुख दूर हो जाने चाहिए। और क्या होना चाहिए? दूसरों को संतुष्टता, खुशी, शांति मिल जानी चाहिए। तो जांच करनी है कहीं हमें देखते दूसरा को दुखी तो नहीं हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो उसका अर्थ है कि हमने अपने मन को उतना शुभ भावनाओं से अभी परिपूर्ण नहीं किया है। तो जो सकाश की ऊर्जा है वो एकत्रित होती है हमारे संकल्पों से। जो भी हम ज्यादा समय सोचते रहते हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, साधारण, व्यर्थ, कुछ भी है, वो ऊर्जा अंदर में संग्रहित होती जा रही है, उस बुद्ध रूपी पात्र के अंदर इकट्ठी होती जा रही है। दूसरा, जो हम चर्चा करते हैं आपस में, कुछ भी चर्चा करते हैं, चाहे हम संसारिक समाचार की, चाहे अलौकिक दुनिया की, ब्राह्मण संसार की, ईश्वरी ज्ञान की चर्चा करते हैं, एक वो ऊर्जा भी अंदर में एकत्रित हो जा रही है। तीसरा, जब हम साधना करते हैं वो साधना भी हमारे अंदर संचित होती जा रही है, एकत्रित होती जा रही है। और जब हम विशेष रूप से मेडिटेशन में बैठते हैं, एकाग्रता पूर्वक उस ऊर्जा का प्रसारण करते हैं, तो वो ऊर्जा उतना ही बिना किसी रुकावट के दूर तक पहुंचती है। नहीं तो अनेक प्रकार की बातों के बादल, संस्कारों के बादल, कई सूक्ष्म कमजोरियों के बादल सामने आते रहते हैं। कई संकल्पों के, विकल्पों के रूप में बैठे हैं हम योग में, लेकिन कुछ ना कुछ संकल्प चलते रहते हैं, तो फिर हमारी सकाश वहां पहुंचती नहीं है। तो पहली बात है सकाश अर्थात ऊर्जा का प्रसारण। सकाश अर्थात जो भी आज तक हमने संकल्प किए हैं, उन संकल्पों की शक्ति जो जमा की है वो एक सकाश का खजाना है। अब प्रश्न दूसरा ये है, सकाश देने के लिए सबसे पहले हम किसको सकाश देनी चाहिए? हमें सबसे पहले हमें स्वयं को सकाश देनी है। जो बाबा कहते हैं अपने संपूर्ण स्वरूप को हमेशा स्मृति में रखो, तो वास्तव में हमारा सभी का संपूर्ण रूप तो है ही, जो बाबा सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं, तो वो सूक्ष्म रूप हमारा है वो। तो हमें पहले स्वयं को ही सकाश देनी है। स्वयं को सकाश कैसे देंगे? सबसे पहले हमें स्वयं की कर्मेंद्रियों को सकाश देनी है, संपूर्ण पवित्र बनाने की। जो कल भी बाबा ने कहा मुरली में, पक्के योगी बच्चे कौन हैं? जिन्होंने अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बना लिया है, वो चंचलता समाप्त हो गई है। अब इसमें साथ साथ में जांच करने की आवश्यकता है कि जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं कहां तक शीतल हुई हैं, वो सतो प्रधान तक पहुंची हैं, सतो तक हैं, या तमो तक हैं, तमो प्रधान हैं, और उसमें डिसहार्टेड नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम इतने सालों से ज्ञान युग में लगे हुए हैं, रेस इस रेस में भाग ले रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार गिर पड़ते हैं, जिसके लिए बाबा ने आज कहा श्रीमत की लगाम से क्या होगा, मन के घोड़े को कंट्रोल करो तो मन मनवा होना सहज हो जाएगा। तो इस ज्ञान मार्ग में डिसहार्टेड नहीं होना कभी भी। सबसे पहले स्वयं को सकाश देते रहना, लेकिन साथ में परहेज भी चाहिए। श्रीमत की जो बाबा हमारे हाथ में लगाम देते हैं उसको टाइट करने के लिए परहेज आवश्यक है। अगर हमें अपने गंतव्य स्थान पर समय पर पहुंचना है तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। साइड सीन देखने में लग जाएंगे तो हम समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए सवेरे से लेकर शाम तक कुछ एक टाइम अपने लिए चयन करना है, निर्धारित करना है, स्वयं के कर्मेंद्रियों को शांत करने के लिए। शांत करने के लिए अर्थात जैसे देवी देवताएं हैं तो स्वयं को उस फॉर्म में समझना है कि मैं वो हूं, बनना नहीं है। देवी देवता बनना नहीं है, कहां पर है? हम सभी देवी देवता हैं, उसकी अनुभूति अभी करनी है, क्योंकि ये संगम युग अनुभव करने का युग है। सारे कल्प में केवल अभी ही संगम युग अनुभव कर सकते हैं। सत्ययुग त्रेता अनुभूति की वहां अनुभूति है ही नहीं, वो तो अभी है, लक्ष्मी के रूप में, नारायण के रूप में। तो फील करना है कि हम उस रूप में हैं। सारे दिन में छोटे छोटे टुकड़ों में इसका अभ्यास करना है कि मैं वही देवता हूं, मैं वही देवी हूं जिसने संसार की आत्माओं के संताप को हरा हुआ है, संसार की आत्माओं के दुखों को दूर किया है, संसार की आत्माओं को शांति से भरपूर किया है। क्योंकि किसने कहा ये? स्वयं जो सृष्टि का रचयिता है, जो हमारी सारी जन्म कुंडली को, हमारी जन्म पत्री को जानता है, उसने कहा है। एक संसार का ज्योतिषी ने नहीं कहा, वो हमारे सारे आदि मध्य अंत को जानता है। तभी तो वो रोज हमें इतने ऊंचे ऊंचे टाइटल से सुशोभित करता है। तुम मेरे लाडले बच्चे हो, मीठे बच्चे हो, विश्व कल्याणकारी बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, मेरी आंखों के तारे हो, मेरे नैनों के नूर हो, तुम तो सदैव विजय रत्न हो, स्वराज्य अधिकारी हो। कितने टाइटल बाबा उनको देखते हैं। तो हम वही देवी देवता हैं जिन्होंने भगवान की श्रीमत पर चल संसार का कल्याण किया हुआ है। तो उस समग्र स्वरूप में रहते हैं, उस फॉर्म में रहते हैं, तभी दूसरों को सकाश दे पाएंगे संपूर्ण रूप में। जैसे सूर्य संपूर्ण रूप में रहता है तो ही दूसरों को वो अच्छी तरह से दे पाता है। बादलों के पीछे हो जाएगा तो उतना महसूस नहीं करा पाता। उसी तरह हम सत्य स्वरूप में रहेंगे, संपूर्ण सत्य स्वरूप में, तभी हम दूसरों को दे पाएंगे। नहीं तो अगर थोड़े बहुत भी संकल्प कुछ परसेंटेज में भी आते हैं तो भी हम दूसरों तक वो पहुंच नहीं पाते हैं। जैसे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, अगर सिग्नल कम हो तो वो टिक दिखाई नहीं देती है, अगर जब तक पूरा उसका सिग्नल प्रॉपर रूप से काम नहीं करता है। उसी तरह से हम सकाश देते हैं तो पहले दूसरों को पहुंच रही है उसकी आवश्यकता नहीं है, स्वयं तक पहुंच रही है पहले वो देखना है, क्योंकि सारा कार्य स्वयं पर करना है। अगर हम स्वयं अच्छे बन गए ना तो हमें सभी अच्छे लगेंगे। अगर स्वयं हमारे में विसंगतियां हैं, विकृतियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हीं से हम जूझ रहे हैं तो दूसरे की भी हमको कमजोरियां ही दिखाई देंगी। जैसा हमने चश्मा पहना वैसे ही दूसरों के भी लक्षण दिखाई देंगे। तो सारा काम स्वयं के ऊपर करना है, दूसरे अपने आप ही चेंज हो जाएंगे। अन्यथा शिकायत हमारी कईयों की यही रहती है कि हमारे ज्ञान का प्रभाव घर में बच्चों पर नहीं पड़ता है, पति पर नहीं पड़ता है, पत्नी पर नहीं पड़ता है। वो पड़ेगा तब जब पहले स्वयं पर पड़ेगा। दूसरे तभी मानेंगे जब हम भगवान की मानेंगे। तो अगर हम दिल पर हाथ रख के देखें तो क्या हम भगवान की सारी बातें मानते हैं? कहां मानते हैं, कितनी सारी सारे दिन में हमारे से गलतियां हो जाती हैं। बाबा कहते हैं सारे दिन में 10-15 गलतियां तो हो ही जाती होंगी, बहुत दिन पहले कहा था अभी तो बहुत ज्यादा हो गई होंगी। तो गलतियों में हम, गलतियों से हम स्वयं को, स्वयं की कमी कमजोरियों का जो चिंतन करते रहते हैं तो दूसरों को कैसे देंगे। इसलिए पहले स्वयं पर काम करना है कि मेरे संस्कार कहां तक बदल रहे हैं, उनके परिवर्तन कहां आ रहा है, तब्दील कहां हो रहे हैं, कहां तक हैं। उसका मापदंड मैं स्वयं ही दे सकता हूं, दूसरे नहीं। दूसरे देंगे लेकिन जो मेरी आंतरिक मेरा विवेक है जो आवाज देता है कि सचमुच हमने अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है। सारे कर्मेंद्रियां छोड़ दो, पहले आंखों को ले लेते हैं। एक एक कर्मेंद्रियों पर PhD करने की आवश्यकता है। जो बाबा कहते हैं आंखें क्या करती हैं, बहुत आंखें बहुत डैश हैं। देखो धोखेबाज चिंतन में रखा हुआ, अच्छी बात नहीं रखी है। ये आंखें बहुत अच्छी हैं, थोड़ा चेंज कर देना उसको, क्योंकि वो शब्दों की ऊर्जा भी ना अंदर में समा जाती है। बाबा ने एक बार कह दिया तो ठीक है, हमने उसको समझ लिया कि धोखेबाज थी। क्या सोचना ये आंखें धोखेबाज थी, है नहीं अभी, अगर हैं सोचेंगे तो जिंदगी भर हैं ही सोचते रहेंगे। ये आंखें पहले धोखेबाज थी, अब कैसी ये आंखें हैं, बहुत अच्छी हैं। कितनी अच्छी हैं उसकी क्यों संख्या होनी चाहिए, कितनी अच्छी हैं। सब कुछ अच्छा दिखता है, सब कुछ अच्छा दिखता है, चाहे कोई घर में गाली दे रहा है वो भी अच्छा दिखता है। और कैसी अच्छी है, सवेरे से शाम तक बाबा को देखती रहती हैं, और कैसी अच्छी है। क्योंकि चिंतन की दिशा को थोड़ा चेंज करना है, ऐसा नहीं कि बाबा जो कहते उसको एज इट इज। बाबा तो हमको एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है बाबा ने संगम में हमको कमी कमजोरियों से अवगत करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि हम जिंदगी भर उसी के पूरे संगम युग तक उसी को जानते रहेंगे। एक बार करवा दिया कि हमारे में कमी है तो उसको दूर कर दिया, उसी दिन दूर कर दिया। उसके चिंतन की दिशा को बोल देना, बदलना उसको, परिवर्तन करना। तो आंखों के बारे में सोचना है कि यही वो आंखें हैं जिनको देखने के लिए भगवान तरस गया था, उसको 5000 बाद ये आंखें देखने को मिली। कौन सी आंखें, ये वाली आंखें, कौन सी, ये सारी आंखें। ये वही आंखें हैं जिन्होंने संसार की अनेक आत्माओं को नजरों से निहाल किया है। ये वही आंखें हैं जिनको रोज सूर्य भगवान दृष्टि देता है, अपनी सारी शक्तियां इनमें भर देता है। ये वही आंखें हैं जो असंख्य भक्त आत्माओं को शांति की अनुभूति कराती हैं। ये वही आंखें हैं जो दूसरे के गुणों को देखती हैं, दूसरों में अच्छाइयां देखती हैं। तो ऐसे इन पर भी 100 पॉइंट लिख सकते हैं। तो स्वयं के ऊपर काम करना है, क्योंकि हमारा जो ये जीवन है बहुत ऊंच जीवन है। कई दफा हम जो ज्ञान को सुनते सुनाते हैं तो हम सुनाने का जो हमारा एक दृष्टिकोण होता है वो हम बाहर की तरफ सुनाते हैं, जैसे दूसरों को सुना रहे हैं, जैसे भी आप भी सुन रहे हैं, तो उससे ज्यादा कौन सुन रहा है। तो जितना ये आप सुन रहे हैं इतना मैं उतना हूं नहीं अंदर से जितना आप सुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये सुनाने से हमारा परिवर्तन हो जाएगा उतना। जब हम अपने बुद्धि मन बुद्धि की तार उसके हवाले में दे देते हैं तो वो अपने आप, उसने जिम्मेवारी ली है, उसने कहा हुआ है कि तुम एक कदम आगे रखो, 1000 कदम मदद के लिए मैं बंधा हुआ हूं। तो अगर हम अपने मन बुद्धि रूपी तार उसके हवाले कर देते हैं तो अपने आप ही हमारे जीवन को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी बाबा की है। लेकिन थोड़ा उसके अनुरूप हमको उस श्रीमत पर चलने की थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। तो जो भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इन कर्मेंद्रियों को अपना क्या बनाना है, सहायक बनाना है। सोमान याद आ गया, जब भी मोबाइल बजे ना तो बहुत अच्छा सोचना उसके बारे में, क्या सोचेंगे, नहीं तो कई बार तो कोई मोबाइल से दुखी हो जाते हैं। तो मोबाइल से क्या, जब मोबाइल भी किसी का बजे तो क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगे, भगवान की कॉल आ गई है ऊपर से, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, नहीं तो कदम कदम पर हमारी टीका टिप्पणी तर्क वितर्क अंदर से असमंजस की स्थिति। जब भगवान कह रहा है कि इस संसार में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, तो जो फोन में जब वो भी तो अच्छा ही हुआ ना, तो हर चीज अच्छी हो रही है वो, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कैसा है उसके लिए थोड़ा बल चाहिए अंदर में। तो सबसे पहली बात है, एक तो हमने सकाश का अर्थ समझा, सकाश अर्थात क्या, ऊर्जा का प्रसारण। दूसरी बात है सकाश किसको देना है, पहले स्वयं को, उसके बाद दूसरों को देना, वो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि जो चीज मेरे अंदर भरी होगी मैं दूसरों को वही दूंगा, जो चीज मेरे अंदर नहीं है और उसको दूसरों को देने की कोशिश करूंगा तो मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, जबकि वो मेरे अंदर है ही नहीं है। तो मैं अगर उस चीज को लंबे समय तक मैंने एकत्रित किया है तो देने की उन्हें राय ही नहीं सकते हैं, वो उसका स्वभाव ही है, सोचना भी नहीं पड़ेगा देगा, वो तो देना ही है। भगवान का स्वभाव ही है सबको देना, देवताओं का स्वभाव ही है सबको देना, तो हम वही तो देवता है ना, बाबा ने तो हमको स्मृति दिला देना कि तुम वही देवता है, तुम दाता के बच्चे हैं, निरंतर वो दातापन की स्मृति रहेगी, अपने आप ही हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र एक खुली किताब की तरह होगा, जो दूसरे उस चरित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे। जैसे हमारे यज्ञ इतिहास में देखें, हमारे पूर्वज दादियां, बाबा का हम सुनते हैं, मम्मा का सुनते हैं, दादियों को बहुतों ने देखा होगा, उनका उनको देखने मात्र से कई प्रश्न से पार हो जाते थे, कई तो उनका प्रश्न ही भूल जाते थे दादियों के आगे जाने से कि क्या पूछना है अपने को, क्यों, वाइब्रेशन से स्वयं को परमात्म एनर्जी से परमात्म शक्ति से इतना चार्ज किया हुआ है, वो कंबाइंड हो चुके हैं कि उनको योग लगाने की आवश्यकता नहीं, उनका जीवन ही योगी है। तो हम कौन से कुल के हैं, हम भी तो उसी कुल के हैं ना, उसी समाज के हैं, उसी कुल के हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा हो, सारा काम स्वयं के ऊपर करना है, घर के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप ही सारी व्यवस्थाएं बेहतर बनती जाएंगी, स्वस्थिति शक्तिशाली है, परिस्थितियां अपने आप ही परछाई की तरह सॉल्व होती जाएंगी, कुछ ना कुछ समय पर उनके टचिंग होती जाएगी। और स्वयं को परिवर्तन करने के लिए चाहिए ज्ञान का बल, ज्ञान का बल बहुत शक्तिशाली खजाना है। सवेरे से शाम तक जितना भी ज्ञान का बल हमें अर्जित कर सके करना है, और ज्ञान का बल अर्जित करने के लिए उसके लिए चाहिए मनन चिंतन, और मनन चिंतन करना सबसे आसान काम है, आसान काम है या नहीं है, नहीं तो कई बोलते हैं कि मनन तो होता ही नहीं है, मनन क्यों नहीं होता, मनन तो होता है, घर में हमारे 50 रिश्तेदार हैं, उनके बारे में कितना सोचते रहते हैं, यहां ज्ञान की 5 बातें हम क्यों नहीं सोच सकते, फलाना ऐसा करता है उसने अगर एक 10 व्यक्ति ने अलग अलग बातें की तो सभी की बातें याद रहेंगी, और यहां तो बाबा ही कह रहे हैं हमको, जैसे आज बाबा ने कहा जो कुछ पढ़ा उसको भूल जाओ और क्या करो, एक बाप को याद करो, और गीत कौन सा था आज, आखिर वो दिन आया, आज कौन सा दिन, कौन सा दिन आया, शुक्रवार का दिन, जब हम भगवान से मिले तो आखिर वो दिन आया, आज वो भी लिख सकते हैं कि जब हमने सेंटर पर कदम रखा था, जब दीदी ने हमको कोर्स कराया था, जब हम पहली बारी प्रदर्शनी में समझाने के लिए गए थे, जब पहली बारी हमको टोली मिली थी, जब पहली बारी हमको दीदी ने डांटा था और बिल्कुल हार्ट नहीं हुए थे, हम अचल डोल रहे थे, हमने उस समय भी सीख लिया था कि अभी आगे बढ़ने के मार्जन हैं, तो वो एक सीख सकते हैं कि आखिर वो दिन आया आज। बाबा ने कहा ये गीत का अर्थ संसार वाले बनाया तो है, लेकिन अर्थ से तुम बच्चे ही जानते हो। तो जितने भी मुरली से हमको मिलता है, मुरली में आज 3 प्रकार के बल हैं, कौन कौन से, पवित्रता का बल, ज्ञान का बल, योग का बल। तो क्या करना है, इस बल से क्या होता है, इन 3 बल से क्या होता है, नई दुनिया की स्थापना होती है। तो उससे पहले नई दुनिया, बाद में नए जीवन की स्थापना हो रही है। ज्ञान को स्वयं से लगाना, जैसे हम सुनते हैं नए दुनिया की स्थापना, तो हमारा ज्ञान जो ना बाहर की तरफ जा रहा है, स्वयं की तरफ नहीं लगा रहे हम उसको। तो ज्ञान का बल हमको स्वयं के लिए एकत्रित करना है, पवित्रता का बल, योग का बल, तो ज्ञान का विस्तार करते जाना है, और ज्ञान को नए नए तरीके से, नए नए एंगल से देखना है। हजारों विधियां हैं ज्ञान को हजम करने की, खाली सुनने से हजम नहीं होगा। अगर एक ही विधि से हम सुनते जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। नए नए तरीके से सुनना है। कई ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अर्थ हमको मालूम नहीं होता है, उन शब्दों को लिखना है। जैसे कल था मुरली में प्रोब, तो प्रोब का अर्थ क्या बताया था? प्रश्नावली। हाँ, तो ऐसे नए नए जो शब्द होते हैं, गोया, एक शब्द आता है गोया, गोया अर्थात मुरली में अर्थ गोया शब्द आता है गोया अर्थात अर्थात। तो जो नए नए शब्द हैं सारे लिखने हैं अलग अलग से। इंग्लिश में कौन से शब्द आते हैं वो लिखने हैं। आई की मुरली में इंग्लिश के शब्द कौन कौन से थे? इनकॉग्निटो, और कौन सा था? वॉरियर, नॉन वायलेंस। और तो कम से कम वही हम कर ले इंग्लिश शब्द के आज के बाद, उसी को हम चिंतन करते रहें करते रहें करते रहें, तो हमारी बुद्धि की ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलेगी। नहीं तो अंदर में रावण कुंडली मार के बैठा हुआ है, रावण के रावण नहीं बैठा हुआ है, रावण के सांप बैठे हुए हैं, जहरीले नाग। कौन से, किस तरह के? व्यर्थ संकल्पों के रूप में, नेगेटिव संकल्पों के रूप में। तो अभी श्रावण का महीना चल रहा है ना, तो रोज ज्ञान की बूंदे अपने पर टपकाते रहना है, तभी अंदर कर्मेंद्रिय हमारी शांत होती हैं। तो ज्ञान का चिंतन करना है तो सकाश की ऊर्जा की उत्पत्ति अपने आप ही होगी, वो अपने आप ही प्रसारण होगा। फिर दूसरा ज्ञान के साथ में सोमान का बल, नए नए सोमान रचने हैं। जो भी हमने आज तक सोमान सुने हैं वो सामने रख के उनसे हट के सोमान सोचने हैं। जैसे हम काली बैठे हुए थे मेडिटेशन शाम को, तो आ रहा था एक बुद्धि में कि मैं ईश्वरीय ऊर्जा का शिवाला हूं, नए नए सोमान। मैं दिव्य ऊर्जा का चैतन्य मंदिर हूं, नए नए सोमान चाहिए। मैं परमात्म शक्तियों का दिव्य धाम हूं, नए नए सोमान, क्योंकि बुद्धि को चलाना है। वही ज्ञान वही है लेकिन नए नए तरीके से, ताकि नई चीजों वो पसंद आती है। आलू खाते रहे जिंदगी भर में तो क्या होगा, अच्छा लगेगा? उसकी कितनी वैरायटी होती है। तो बाबा भी कहते हैं ज्ञान क्या है ये, तुम बच्चे बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो तो ज्ञान की लेन देन करनी है, तुम बच्चे डैश डैश हो, आज की मूल्य में या कल था आर बी, तुम बच्चे आर हो और बी हो, रूप बसंत, तुम बच्चे रूप बसंत हो। तो रूप क्या होता है, बसंत क्या होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से देश में मिलते हैं, कौन से मौसम में मिलते हैं? ये मधुबन में मिलते हैं, बॉम्बे बिरले पार्ले में मिलते हैं। रूप अर्थात क्या? रूप अर्थात ज्ञान नहीं, रूप योग को कहा जाता है। और बसंत अर्थात योग, जिसके मुख से मोती झरते रहते, दो भाई थे, वो कहानी आप सर्च करके सुन भी सकते हैं। तो हम बाबा कहते तुम बच्चे रूप बसंत हो, तो नए नए सोमान रचने हैं, और सोमान के ऊपर उसको फिर उसका विस्तार करना है। जैसे एक ही सोमान बताया हमने कि मैं ईश्वरीय ऊर्जा का शिवाला हूं, अब उसको महसूस करना है कि जैसे शालिग्राम है, हम जो बाबा कहते तो बच्चे शालिग्राम हूं, तो एक मंदिर है और यहां शालिग्राम हूं मैं, आत्मा शालिग्राम के रूप में, और स्वयं शिव निराकार मेरे ऊपर ज्ञान जल ऊपर से बरसा रहे हैं, और वो जल पूरे मंदिर में जा रहा है। ये शरीर एक मंदिर है, शरीर शरीर नहीं है, इस मंदिर में वो ज्ञान का जल, वो परमात्म शक्तियों की ऊर्जा दौड़ रही है, रग रग में समा रही है, खून के कतरे कतरे में समा रही है, बह रही है, करंट की तरह दौड़ रही है। तो उसको विस्तार से अगर करेंगे नए तरीके से तो उसकी अनुभूति साथ साथ में होगी। तो अभी 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत अनुभव करना पड़ेगा ना। खुली आंखों से बैठेंगे और खुशी खुशी बैठेंगे, मुस्कुराते हुए, क्योंकि हम देवी देवता हैं। इसी स्मृति में बैठेंगे, मैं चैतन्य मूर्ति ईश्वरी शिवालय में विराजमान हूं, शिव निराकार। मुझ आत्मा का, मुझ शालिग्राम का सर्वसंबंधी परम धाम से अवतरित हुआ और मुझ शालिग्राम के ऊपर सर्व शक्तियों का जल अर्पित कर रहे हैं। मेरे आसपास जितने भी भाई बहने बैठे हैं, ये सब चैतन्य शिवालय हैं। सबके ऊपर परमात्म शक्तियों का जल बरस रहा है। परमात्म पवित्रता की बरसात हो रही है। सिर के सिरे से लेकर पांव तक परमात्म शक्तियों की ऊर्जा दौड़ रही है। सारी कर्मेंद्रियां गहन शीतलता का अनुभव कर रही है। महसूस कीजिए स्वयं शिव बाबा ब्रह्मा भाव के वरदानी हस्त से मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे अपना सर्व कुछ समर्पित कर रहे हैं। सारी ऊर्जा मुझ में समावेश हो रही है। मैं आत्मा चमकता हुआ दिव्य सितारा इस देह रूपी मंदिर से स्वयं को संपूर्ण अलग महसूस कर रहा हूं। मुझ आत्मा के वाइब्रेशन परमात्म प्यार से भरे हुए हैं। परमात्म पवित्रता से भरे हुए हैं। जहां भी मुझ आत्मा की दृष्टि पड़ेगी परमात्मा शक्तियों का निरंतर प्रसारण होता रहेगा। परमात्मा प्यार के वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। चारों ओर सुख शांति के वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। असंख्य आत्मों के बंधन टूट जाएंगे। स्वयं ज्ञान सूर्य का प्रकाश मुझ आत्मा में भरकर सारों ओर प्रसारित हो रहा है। विश्व के कोने कोने तक परमात्म शक्तियों की किरणें, परमात्म शक्तियों के वाइब्रेशन निरंतर फैलते जा रहे हैं। मैं आत्मा दिव्य ऊर्जा से भरपूर हूं, सदा काल के लिए भरपूर हूं। अखंड समृद्धि स्वरूप हूं। सदा जागती ज्योत हूं। उस ज्ञान सूर्य की भांति में आत्मा भी मस्त ज्ञान सूर्य बनकर सारे संसार में पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम के वाइब्रेशन निरंतर फैलाती जा रही हूं। शांति। तो नए सोमान की रचना रचनी है तो सोमान का बल, ज्ञान का बल, सोमान का बल, शक्तियों का बल, परमात्म शक्तियों की लिस्ट बनानी है। उन शक्तियों को प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र पर संजो कर रखना है, क्योंकि खाली योग में हम शक्तियों को यूज करेंगे वो थोड़ी बहुत ही जमा होती हैं, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर बात आती है, किसी ने कुछ बात कह दी और उसको हमने समा लिया, किसी को बताया नहीं जो बाबा कहते हैं, तो वो हमारी शक्ति अविनाशी बन जाएगी। क्योंकि योग में केवल हम अपने साथ बात कर रहे हैं, जब हम समन संपर्क में आते हैं, कई ऐसी बातें होती हैं जिनको समाना पड़ता है, समेटना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, वो प्रैक्टिकल में जब हम करेंगे तो शक्तियां दिन प्रतिदिन हमारे कर्म क्षेत्र प्रैक्टिकल में दृष्टिगोचर होंगी, वो दिखाई देंगी, अनुभव करेंगे, दोसेंगे। तो शक्तियों की एक माला तैयार करनी है, कौन कौन सी शक्तियां बाबा से हमको मिली हुई हैं, कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं, दुर्गा, अम्बा, काली और कौन सी शक्ति मिली, कौन कौन सी मिली है शक्ति, वो आठ छोड़ के, आठ तो किताब में है, वो तो एग्जाम्पल है केवल। पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, हाँ जी, महसूसता की शक्ति, रियलाइजेशन पावर, हाँ जी, सत्यता की शक्ति, निर्भय शक्ति, ज्ञान की शक्ति, परिवर्तन शक्ति। तो कुछ अलग से हटके लिस्ट बनानी है, जो आठ किताबों में वो तो ज्ञान किताबों तक ही सीमित रह गया है, कुछ ज्ञान अपने अंदर भी हमको अप्लाई करना है। मनन करने की शक्ति, हजम करने की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, परिवर्तन करने की शक्ति। तो यहां तो हम चिंतन कर, लेकिन घर में जाकर एक कर्म करना है। जब तक हम अपने साथ न्याय नहीं करते हैं तब तक वो ज्ञान अपना नहीं होता है, फिर ज्ञान समय पर हमको टच भी नहीं होगा। जब समस्या आएगी समय पर हम इधर उधर फिर भागेंगे उस समस्या का सलूशन करने के लिए।
तो हमको स्वयं उस पर काम करना है। बाबा ने कितनी हजारों मूल्य में कहा अपनी गोट तो नशा चढ़े, तो हम घोटते हैं नहीं और फिर नींद के नशे में चले जाते हैं। तो घोटना है ज्ञान को अच्छी तरह घोटना है और घोट के फिर सिप सिप करके पीते जाना है। और कितनी बार पीना है? बार बार पीना है। कितनी बार पीना है? वो सवेरे उठते ही चालू कर देना उसको, ताकि वो नशा चढ़ा रहे। ये संसार में नशे वाले लोग होते हैं, क्या करते हैं, बोतलों एक जेब में ही रहता है उनके, खाली होता दूसरी जेब से निकालते हैं, सॉक्स में भी पड़ा होता है जो अच्छे नशेड़ी होते हैं। तो हमारे हर कर्मेंद्र में ज्ञान समा जाए, समय पर वो काम में आ जाए, तो निरंतर ज्ञान का नशा चढ़ जाए, तब वो ज्ञान बल का काम करेगा, तब उस ज्ञान बल से शक्तियों का अवतरण होगा, वो शक्तियों का विस्फोट होगा, वो शक्तियां हमारे जीवन में अपने आप फिर काम करेंगी। तो शक्तियों का बल, फिर चाहे हमें तपस्या का बल, अगर हम हमारा सकाश प्रैक्टिकल स्वयं अनुभव करें तो तपस्या का बल भी चाहिए। और तपस्या के लिए कोई विशेष जो हमको समय मिलता है वो तो करना ही करना, उसके अलावा भी छोटे छोटे हमको बीच बीच में टाइम निकाल के 2 मिनट का 1 मिनट का वो अभ्यास करने हैं। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल तो वही है, लेकिन उसके अलावा भी हम अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार अपना ट्रैफिक कंट्रोल को तैयार करें, क्योंकि ऐसा नहीं हम कर्म क्षेत्र पर हैं, अब ग्राहक आ रहे हैं उसको हम कह देंगे 2 मिनट रुक जाओ, ऐसा नहीं। कर्म करते करते हम उसको मेडिटेशन किया जा सकता है, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना है, उसको गुड विशेष दे देना अंदर ही अंदर, इसका भी कल्याण हो जाए। या जब हमको मौका मिलता है 2 मिनट का 2 मिनट या शरीर पन्ने का अनुभव करें, 2 मिनट में फरिश्ता बनकर सारे संसार का परिभ्रमण करें, 2 मिनट में अपने लौकिक घर को सकाश दे दें, लौकिक संबंधियों को सकाश दे दें, जो भी समस्याएं हैं। लेकिन हमको व्यक्तिगत सकाश कम देना, हमको सार्वजनिक सकाश देना है। जब हम व्यक्तिगत सकाश देते हैं तो कहीं ना कहीं मोह की रगें हमारी मजबूत होती जाती हैं। इसलिए बच्चे हमारे केवल अपने घर के बच्चे नहीं, पूरा संसार ही हमारे बच्चे हैं, पूरे संसार के हम इष्ट देव इष्ट देवियां हैं। इसलिए थोड़ा हद से बाहर निकलना है, नहीं तो हद के जो संकोच की विचारधारा, हमारी संकुचित विचारधारा है, उससे भी हमारे विकार हमारे नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, हद से निकलो बेहद में रहो सदा। बेहद का भाव बच्चों को बेहद में ले जाते हैं, तो सदा बेहद की मानसिकता बनाकर रखनी है। तो छोटे छोटे तपस्या के हमको प्रयोग करने हैं, तपस्या जमा करनी, तपस्या का बल जमा करना है, चाहे वो फरिश्ता रूप में जो बाबा 5 स्वरूप भी कहते हैं, और भी बहुत सारे स्वरूप है, वो खाली 5 नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे स्वरूप निकाले जा सकते हैं। और कौन से स्वरूप हो सकते हैं? वो 5 स्वरूप से अलग हटके हम वो 5 स्वरूपों का अभ्यास किस लिए करते हैं? क्यों करते हैं 5 स्वरूप का अभ्यास? बाबा ने कहा इसलिए, स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए, समृद्धि पावरफुल बनाने के लिए, एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए, पवित्रता का बल भरने के लिए। तो पहले देखना हम ये चीज कर क्यों रहे हैं, हम यहां बैठे हैं तो बैठे में क्यों कर रहे हैं हम? बाबा ने कहा इसलिए कर रहे हैं, एक तो वो भी है, दूसरा उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, और वो देखना हम इस काम को करके, हम मुरली सुनने जाते थे, हम क्यों सुनने जा रहे हैं? घर का इतना टाइम निकाल के, घर वालों से थोड़ा ताने भी सुन के जाना पड़ता है, कोई कुछ बोलता है, कोई फिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं आकर? स्वयं को परिवर्तन करने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चों को आवाज नहीं सुनाई देती है, तो पहले तो अपनी आवाज भी सुनाई देनी चाहिए, दूसरों के तो बाद में, कि मैं आत्मा अंदर से कितनी तड़फ रही हूं, मैं शांत हूं या नहीं हूं, मेरी अंदर से मैं संतुष्ट हूं या नहीं हूं, अंदर में ज्ञान से भरपूर हूं या नहीं हूं, परमात्म प्यार से भरी हूं या नहीं भरी हूं। तो ड्रिल बहुत तरीके की हो सकती है, ज्ञान की ड्रिल हो सकती है, आपस में 4 लोग बैठे हैं ज्ञान की ड्रिल कर सकते हो। जैसे बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं अभी क्या बनाने आया हूं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, ऐसे चिंतन हो सकता है, तमो प्रदान से लक्ष्मी से, वो ड्रिल जल्दी कर दी उन्होंने तो थोड़ा कंट्रोल भी चाहिए क्योंकि हमें बताने की उत्सुकता ज्यादा होती है, सोचा बिना सोचे समझे उतर दे फटाफट, चलो वो भी ठीक ही तो है, खराब बात थोड़ी होगी तो ये एक ड्रिल है, ये ड्रिल माना मन को एकाग्र कर रहा है, मन को शक्तिशाली बनाना, मन जो सो गया है एकदम गहरी निंद्रा में चला गया है उसको थोड़ा झिझोड़ना है, उठाना है। तो नए नए तरीके से ज्ञान की खेले की जा सकती है। अभी टाइम कम है नहीं तो खेल तो वो सारे हैं, एक छोटा सा हम कर लेते हैं फिर भी। क्योंकि ये टाइम थोड़ा भारीपन वाला होता है, वैसे तो सभी की आंखें खुली हैं, तो 5, 6, 7, 8 नंबर तक हम लेंगे और हम फिर नंबर बोलेंगे, आपको वो करना है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे करते हैं हम। तो एक नंबर साकारी, तो साकारी में आप ताली बजाएंगे, बहुत भाई बहन कराते भी हैं, तो एक नंबर में साकारी 3 बार ताली बजाएंगे, फिर आकारी नंबर भी याद रखना, थोड़ा अच्छी तरह हिलाने, थोड़ा जो स्टिफ हुआ ना खुल जाए थोड़ा, क्योंकि हमारा शरीर तंदुरुस्त होना बहुत लाजमी है। तो आकारी 2 नंबर, आकारी 3 नंबर, निराकारी ऊपर से शिव बाबा को पकड़ना, परमधाम में हाथ पहुंचा दो और बाबा को खींच के ले आओ नीचे से एकदम, हाथों में कौन है, शिव बाबा कहां पर है, मेरे हाथों में है, कहां से लाए हैं, परमधाम से लाए हैं, और फिर बाबा को ऊपर ही छोड़ दो, वापस भी पहुंचाना ना, वो बोलेगा कम से कम मुझे छोड़ तो थोड़ी देर के, दूसरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए भी। तो एक नंबर साकारी, 2 नंबर, 3 नंबर निराकारी, तो 3 हो गया, याद रखने नंबर, फिर बाद में हम नंबर ही बोलेंगे। फिर 4 नंबर है दुर्गा अंबा काली, ठीक है, तो दुर्गा 4 नंबर, दुर्गा कैसे करती है, सभी ऐसे करो, दुर्गा और अंबा तपस्वी, मम्मा का तपस्वी रूप, और काली निकालो जीव अभी, 6 नंबर क्या है, काली, दुर्गा अंबा काली, तो 4 नंबर फटाफट करो, हाँ एक्शन करने का भी, दुर्गा, हाँ भाइयों से तो भाइयों का दुर्गा अच्छा लग रहा है, 4 नंबर दुर्गा, 5 नंबर अंबा, 6 नंबर काली, हाँ तो ये 6 हो गए। फिर 7, 8, 9, चलो पहले 6 कर, 3 नंबर क्या था, हाँ 2, 1, 2 नंबर ये नहीं, 2 नंबर ये था, ऐसे ऐसे तो पल्ला झाड़ रहे आप, ऐसे करने का, फरिश्ता ऐसे उड़ता है, हाँ तो 1, 2, 3 नकल मार सकते हैं, 4, 5, 6 तो ये भी एक ड्रिल है, ऐसे बहुत सारा आगे तक 50 तक किया जा सकता है। तो चिंतन करने के लिए तो इतना विस्तार पड़ा हुआ है, बाबा कहते हैं सार को विस्तार और विस्तार को सार में लाओ, तो ऐसे कुछ एक बातें थी। तो साकाश का प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए ज्ञान को स्वयं में हजम करेंगे तो वो साकाश अपने आप ही अनुभव होता रहेगा। ठीक है, टाइम हो गया, ओम शांति।
हम सभी साकार में तालियां बजाकर भाई जी का बहुत बहुत अभिवादन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति। विशेष पात्र